بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، اپنے آج کے کاریکرم کا آرمبھ ہم سورہ شمس کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا شرح پراپت کیا ہے سورگیے محمد صدیق منشاوی نے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، سوگند ہے سوریہ کی اور اس کے پرکاش کی اور چندرما کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ دھرتی کو پرکاشت کر دے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آکاش کی سوگند اور جس نے اسے اٹھایا، اور دھرتی کی اور جس نے اسے بچھایا، اور آتما کی اور جس نے اسے ٹھیک کیا، پھر اسے برائی اور بھلائی کا مارگ دکھا دیا، निश्चित रूप से वही सफल रहा जिसने अपनी अंतरात्मा को पवित्र बना लिया, और दुर्भाग्य हुआ जिसने उसे पापों से दूषित कर लिया। समूद जाति ने अपनी उद्दंडता के कारण पैगंबर को झुटलाया। जब उनमें का सबसे बड़ा दुर्भागी उठ खड़ा हुआ तो अल्लाह के पैगंबर ने उनसे कहा, अल्लाह की ऊंटनी और उसके पानी पीने के स्थान का ध्यान रखना। किंतु उन्होंने उसे झुटला दिया और उस ऊंटनी की हत्या कर दी, तो उनके पालनहार ने उनके पाप के कारण उन्हें दंडित किया और उन्हें तथा उनकी बस्ती को मिट्टी में मिलाकर बराबर कर दिया, और उसे इस दंड के परिणाम का कोई भय नहीं।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है pasttoday.ir.com /hi। आज बुधवार है, शाबान की 8, स्फंद की 10 और मार्च की 1 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप सुनेंगे कार्यक्रम आशा की किरण, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आजकल। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रमुख ने कहा कि तेहरान का यूरेनियम संवर्धन 60% है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के प्रमुख ने सुप्रीम लीडर की आम माफी के ऐलान की सराहना की है। अरब देशों की संसद ने इसराइली छापामार संगठनों को आतंकी घोषित करने की मांग की है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोप हमले जारी है। अमेरिका का बयान, रूस की विजय हरगिज बर्दाश्त नहीं है। और अब आप मरियम मेरदादी और अख्तर अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने 84% यूरेनियम के संवर्धन के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि हमारी उत्पादन लाइन 60% है। उन्होंने कहा कि एजेंसी के विशेषज्ञों ने भी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि हमारा उत्पादन 60% है। इस्लामी गणतंत्र ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने सरकारी प्रतिनिधिमंडल की बैठक के मौके पर संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि जब मीडिया साम्राज्यवाद ने अपने मनोवैज्ञानिक हमलों को देश की स्थिति को खराब करने के लिए इस्तेमाल किया, और उसने आईएईए के साथ संबंधों को खराब दिखाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पिछले 2 महीनों में महानिदेशक और उनके सहायकों का आना जाना, मुलाकातें हुई और बातचीत अंजाम पाई। उन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में एजेंसी के प्रतिनिधिमंडल तेहरान में मौजूद थे। सेंट्रीफ्यूज मशीनों को लगाने और उनके द्वारा घोषित कड़ों के बारे में दिए गए बयानों पर चर्चा हुई और इन मुद्दों की अच्छे से समीक्षा की गई। विशेषज्ञों के स्तर पर वार्ता हुई और विशेषज्ञों ने निरीक्षण किए और उसके परिणाम का ऐलान किया कि किसी भी प्रकार का कोई दिशा भेद नहीं है। इसी आधार पर विशेषज्ञ स्तर पर होने वाली चर्चा के अनुसार ये मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है।
इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने कहा कि हम नाटो का दायरा विस्तृत किए जाने का विरोध करते हैं और साथ ही यूक्रेन जंग के भी खिलाफ हैं। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने नॉर्वे के विदेश मंत्री एनिकन वेटफील्ड से मुलाकात में ये बात कही। उन्होंने इस मुलाकात में क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की और पारस्परिक संबंधों के विस्तार पर जोर दिया। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने दोनों देशों के बीच जारी राजनीतिक बातचीत पर खुशी जाहिर की और इन वार्ताओं का सिलसिला जारी रखने में नॉर्वे की दिलचस्पी का स्वागत किया। انہوں نے حالیہ مہینوں میں ایران میں ہونے والے ہنگاموں اور دنگوں کے دوران کچھ یورپی دیشوں کے غیر سارتھک اور ہستکشیپ پورن سٹینڈ کی آلوچنا کی اور کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ بات چیت سے غلط فہمی دور ہوگی۔ ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان نے یوکرین جنگ کے بارے میں ایران کا پکش رکھتے ہوئے کہا کہ ہم ناٹو کے دائرے بڑھائے جانے کا ورودھ کرتے ہیں، ساتھ ہی یوکرین جنگ کے بھی خلاف ہیں اور دیشوں کی سمپربھوتا اور اکھنڈتا کا سمان کرتے ہیں۔
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के प्रमुख ने दंगों के दौरान गिरफ्तार नागरिकों के लिए इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता की आम माफी की पहल की सराहना की है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने जिनेवा में अपने प्रवास के दूसरे दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के प्रमुख साबा क्रोसी से भेंटवार्ता की। इस मुलाकात में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के प्रमुख ने पिछले महीनों दंगों के दौरान ईरान में अशांति और फसाद भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों के लिए इस्लामी क्रांति के नेता के आम माफी के आदेश की सराहना की और कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान की यह पहल सराहनीय है। इसके साथ ही उन्होंने सभी चुनौतियों के बावजूद 50 लाख से अधिक अफगान नागरिकों की मेजबानी के लिए ईरान के मानवीय और अच्छे पड़ोसी پر آدھارت کاریوں کی سراہنا بھی کی۔ سنیکٹر سنگھ کی مہا سبھا کے پرمکھ نے سنیکٹر سمگر کاری یوجنا جے سی پی او اے کی اشارہ کرتے ہوئے آشا ویکتی کے سمجھوتے کے پکشکاروں کے بیچ چل رہے سمپرکوں کا پریڑام اس کے دوبارہ بحال ہونے کے روپ میں سامنے آئے گا۔
مدافعان آسمان ولایت 1401 ہوائی سین ابھیاس ختم ہو گیا۔ اسلامی گنتنتر ایران کے ڈیفینس یونٹ کا سنیکت مدافعان آسمان ولایت سینیا ابھیاس کے کمانڈر قادر رحیم زادے نے سینیا ابھیاس کی سماپتی کی گھوشنا کرتے ہوئے کہا کہ دشمنوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ دیش کی سرکشا، راشٹری ہتوں کی رکشا اور سمندری، زمینی اور ہوائی سیماؤں کی سرکشا ایران کی سشستر سینا کی ریڈ لائن ہے۔ مدافعان آسمان ولایت نامک سینیا ابھیاس کے کمانڈر نے کہا کہ ان سینیا ابھیاس کے دوران ایک بار پھر یہ ثابت ہوا کہ دیش کے اندر آدھونک ایئر ڈیفینس سسٹم تیار کرنے کی ہمارے یوواؤں کے اندر بے پناہ کشمتائیں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سینیا ابھیاسوں کے دوران ایئر ڈیفینس سسٹم کے وبھاگ میں جتنے بھی سسٹم پریوگ کیے گئے ہیں، چاہے وہ رڈار ہوں، میزائل ہوں یا الیکٹرانک اپکرن، سب کے سب ایرانی وشیشوں اور ویگیانکوں نے ہی تیار کیے ہیں۔
ایران کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے چیف احمد رضا رادان نے کہا ہے کہ اسکولی بچیوں کو زہر دیے جانے کے معاملے میں ہمیں اصلی ذمہ دار کی تلاش ہے اور یہ جانچ بہت جلد پوری کر لی جائے گی۔ جنرل رادان نے کہا کہ اس سلسلے میں ٹھوس قدم اٹھائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس وبھاگ اور انیہ سنستھائیں بھی اس مسئلے کی جانچ کر رہی ہیں، ہمیں بہت جلد اچھا نتیجہ ملنے کی امید ہے۔ پولیس پرمکھ کا کہنا تھا کہ ابھی اس معاملے میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے، فی الحال سمبھاوت آروپیوں کو چنہت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی سگھن جانچ چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ساری سنستھائیں مل کر کام کر رہی ہیں اور ہم بہت جلد گھٹنا کا پورا بیورا جنتا کے سامنے پیش کریں گے۔
عرب دیشوں کی سنسد نے مانگ کی ہے کہ اسرائیلی سیٹلرز کے چھاپہ مار سنگٹنوں کو آتنکی سنگٹنوں کی سوچی میں شامل کیا جائے۔ عرب سنسد نے، جس میں 22 دیشوں کے سانسد شامل ہیں، ویسٹ بینک میں فلسطینیوں پر اسرائیلی چرمپنتی سنگٹنوں کے حملوں کا نوٹس لیتے ہوئے وشو سمودائے سے مانگ کی کہ ان سنگٹنوں کو آتنکیوں کی سوچی میں رکھا جانا چاہیے۔ بیان میں کہا گیا کہ ان سنگٹنوں نے ویسٹ بینک کے شہروں میں اور نابلس کے قریب بھیانک اپرادھ کیے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ چرمپنتھی یہودی سٹلرز فلسطینیوں کے خلاف منصوبے کے ساتھ ہنسا کر رہے ہیں اور یہ ایک پرکریا بن گئی ہے۔ چونکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوتی، اس لیے ان کا دساہس اور بھی بڑھ رہا ہے اور وہ فلسطینیوں پر گولیاں چلاتے ہیں، ان کے گھروں کو گراتے ہیں اور ان کی فصلوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ عرب سنسد نے وشو سمودائے اور سرکشا پریشد سے مانگ کی ہے کہ چرمپنتی سیٹلرز کے حملوں کو رکوانے کے لیے تتکال کارروائی کرے اور ان سنگٹھنوں کو آتنکیوں کی سوچی میں شامل کریں۔
ویسٹ بینک اور بیت المقدس میں اسرائیلی فورسز فلسطینیوں پر لگاتار حملے کر رہی، جبکہ اس بیچ بیت المقدس میں امریکہ کے فلسطینی معاملوں کے پرتنیدھی کاریالے نے زائونیوں کے اندھادھند حملوں کی آلوچنا کی ہے۔ اسرائیل کے ہوم لینڈ سیکیورٹی منتری اتمار بن غفیر نے بیان دیا کہ ہم شانتی کے لیے رکشا کے بجائے آکرمن کی نیتی کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ بچاؤ نہیں، حملہور ہاتھ کا استعمال کیا جائے گا۔ اس بیچ اسرائیل کے یدھ منتری نے युद्ध मंत्री युआफ ग्लांट ने आदेश दिया है कि वेस्ट बैंक में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी जाए क्योंकि आने वाले दिनों में वहां हालात बिगड़ने वाले हैं।
फिलिस्तीनी युवाओं ने वेस्ट बैंक में जानी बस्तियों के निवासियों और सैनिकों के खिलाफ एक दिन में 61 कार्रवाइयां की हैं। शाम न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी प्रतिरोधकर्ता गुटों ने पिछले 24 घंटों के दौरान वेस्ट बैंक के विभिन्न क्षेत्रों 61 कार्रवाइयां अंजाम दी, जिसमें 12 घटनाएं फायरिंग की हुई। जायनी बस्तियों के निवासियों के 2 वाहनों में आग लगा दी, 13 बार जायनियों के कॉलोनियों के निवासियों का मुकाबला हुआ और उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और 5 बार पेट्रोल पंप से हमला किया गया।
मानवाधिकार संगठन डॉन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी नागरिकों की सजाए मौत के मामले में उनके आदेशों का पालन करने वाले 10 जजों पर मुकदमा चलाने और उन्हें सजाए मौत देने की मांग की थी।
अमेरिका के रक्षा उप मंत्री कोलिन खाल ने कहा है कि यूक्रेन की जंग में रूस को किसी भी हालत में विजय नहीं मिलनी चाहिए और अमेरिका ने यूक्रेन को दूसरे घटकों से मिलने वाली सामरिक सहायता की दुगनी सहायता दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में मुकदमे के लिए पेश किया जाना चाहिए और उनके शब्दों में यूक्रेन में हुए युद्ध अपराध का उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए। कीव में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अटॉर्नी जनरल करीम खान से मुलाकात में जेलेंस्की ने कहा कि हमें ये इशारा नजर आना चाहिए कि न्याय होगा। वहीं करीम खान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कीव के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के साथ भरपूर सहयोग करेगा। अमरीकी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन को अब तक $50 अरब की सहायता दी जा चुकी है, जिसमें से आधी सहायता अमरीका ने मुहैया कराई है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कुछ क्षेत्रों में रूसी हमलों के तेज होने की बात स्वीकार की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने स्वीकार किया है कि यूक्रेनी सेना पर दबाव बढ़ रहा है और बाखमूत के पूर्वी सीमावर्ती शहर पर रूस द्वारा हमले अधिक तेज होते जा रहे हैं।
भारत के हरियाणा राज्य की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह खूंखार कैदी नहीं है और हत्या के 2 अलग अलग मामलों में उसकी सजा को सीरियल किलिंग नहीं कहा जा सकता। राज्य सरकार के मुताबिक गुरमीत हमलावर नहीं था और उसने दोनों मामलों में वास्तविक हत्याओं को अंजाम नहीं दिया था। इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। भारत का 31वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी है, जिसमें ईरान और भारत सहित लगभग 1000 प्रकाशक भाग ले रहे हैं। ईरानी किताबों के स्टॉल पर लोगों की काफी भीड़ है और लोग अपनी पसंद की किताबों को देख और खरीद भी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि सीरिया के हालिया भूकंप में 6000 से अधिक जाने चली गईं, जबकि दसियों हजार लोग अब भी लापता और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। यूक्रेन संकट के संदर्भ में जापान और दक्षिण कोरिया ने अब अमेरिका का खुलकर पक्ष लेना आरंभ कर दिया है। यूक्रेन युद्ध के बहाने रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को अधिक बढ़ाने में अमेरिका के 2 एशियन घटक देश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत का 31वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी है, जिसमें ईरान और भारत सहित लगभग 1000 प्रकाशक भाग ले रहे हैं। ईरानी किताबों के स्टॉल पर लोगों की काफी भीड़ है और लोग अपनी पसंद की किताबों को देख और खरीद भी रहे हैं। ज्ञात रहे कि ईरानी साहित्यकारों ने फारसी भाषा को ईरान और भारत का संयुक्त मंच बताया है और कहा है कि फारसी भाषा अब दरबारी या सरकारी भाषा नहीं है, बल्कि आम लोगों की भाषा है, जिसका इतिहास बहुत पुराना है। पूरी जानकारी के साथ दिल्ली से शमशाद काजमी।
भारत का 31वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में जारी है, जिसमें ईरान सहित 30 देशों के लगभग 1000 प्रकाशक भाग ले रहे हैं। इस मेले में ईरान के स्टॉल पर किताबों के प्रशंसकों की भीड़ है, जो विभिन्न विषयों पर फारसी, उर्दू और अंग्रेजी में छपी पुस्तकों को देख रहे हैं और अपनी पसंद की किताबें खरीद भी रहे हैं। भारत के शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने ईरानी स्टॉल का भी निरीक्षण किया और ईरानी प्रतिनिधियों से भेंट की। ईरान के पुस्तक भवन के महानिदेशक अली रमजानी ने कहा कि इस साल दिल्ली के पुस्तक मेले में इस्लामिक गणतंत्र ईरान के स्टॉल पर पहले से अधिक पुस्तकों और साहित्यिक सामग्रियों का प्रदर्शन किया जा रहा है और ईरान के लेखकों, साहित्यकारों और शिक्षकों ने भी इसमें भाग लिया है और ऐसा ईरान और दूसरे देशों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत किया जा रहा है, जिस पर ईरान सरकार अधिक ध्यान दे रही है। दिल्ली पुस्तक मेले में भाग लेने वाले ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद प्रकाशन के क्षेत्र में ईरान की प्रगति का उल्लेख किया और कहा कि वार्षिक रूप से लगभग 80,000 किताबें प्रकाशित की जाती हैं, जिनमें कहानियों, साहित्य एवं कविताओं से संबंधित किताबें भी शामिल होती हैं। ईरानी साहित्यकारों ने फारसी को ईरान और भारत का संयुक्त मंच बताया और कहा कि फारसी अब दरबारी या सरकारी भाषा नहीं, बल्कि आम लोगों की भाषा है, जिसका इतिहास बहुत पुराना है। भारत की नई शिक्षा नीति में फारसी को विदेशी भाषाओं की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, बल्कि इसे भारत की क्लासिकल भाषाओं के साथ रखा गया है, जो भारत में फारसी के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इस पुस्तक मेले में नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया और ईरान में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन करने वाले संगठन के बीच साहित्य के क्षेत्र में आपसी सहयोग और साहित्यिक आदान प्रदान बढ़ाने के उद्देश्य से एक मसौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
संयुक्त राष्ट्र संघ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि सीरिया के हालिया भूकंप में 6,000 से अधिक जानें चली गईं, जबकि दसियों हजार लोग अब भी लापता और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों की वजह से जो रुकावटें आ रही हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए। रिपोर्ट पेश करें साथी अहमद अब्बास।
संयुक्त राष्ट्र संघ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि हालिया भूकंप के नतीजे में सीरिया में 6,000 से अधिक जानें चली गईं, जबकि दसियों हजार लोग अब भी लापता हैं और लाखों बेघर।
डिस्ट्रक्शन डैमेज।
भूकंप के कारण सीरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, मलबा हटाने के लिए मशीनों की जरूरत है और मेडिकल उपकरणों की भी भारी कमी है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पाबंदियों की वजह से जो रुकावटें आ रही हैं, उनको तत्काल हटाया जाए। सीरिया के मामलों में संयुक्त राष्ट्र के दूत गियर पीटरसन ने भी कोशिश की कि सारे सदस्यों को समझाएं कि सीरिया के भूकंप पीड़ितों की हालत बहुत खराब है, हर तरह की राजनीति से बचते हुए अब मदद की जानी चाहिए, इसमें देरी ना हो। संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि सीरिया पर लगे प्रतिबंधों के विनाशकारी प्रभावों की समीक्षा की जानी चाहिए। ये चीज के दमिश्क को तत्काल सहायता नहीं भेजी जा रही है बहुत हैरत अंगेज है। दूसरे इलाकों में आतंकी संगठन सहायताओं को अपने कब्जे में ले लेते हैं और लोगों को बेचते हैं।
लिफ्टिंग ऑफ दिस अनजस्ट।
ईरान के राजदूत ने सुरक्षा परिषद से मांग की कि सीरिया की जनता पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से स्थगित करने के बजाय पश्चिम के एक पक्षीय प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। सीरिया में विदेशी सेनाएं तेल और गैस के भंडारों की चोरी कर रही हैं, जिसके नतीजे में इस देश में ईंधन का संकट है। ये सिलसिला भी खत्म होना चाहिए। सीरियाई सरकार के अनुसार अब तक 100 अरब डॉलर की चोरी अमरीकी सेनाओं की निगरानी में हो चुकी है। ईरान के राजदूत इरवानी ने कहा कि ईरान अस्ताना बैठक के सहयोगियों के साथ मिलकर सीरियाई जनता की लगातार सहायता करता रहेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि दमिश्क के आवासीय इलाके पर पिछले हफ्ते इसराइल के मिसाइल हमलों की निंदा की जानी चाहिए और सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है कि इसराइल की इन आतंकी गतिविधियों की निंदा करे। सुरक्षा परिषद की बैठक में ईरान की तरफ से इन मुद्दों पर औपचारिक रूप से अपना स्टैंड रखा गया और सीरिया की तत्काल मदद किए जाने पर जोर दिया गया, जो भूकंप के विनाशकारी प्रभावों को झेल रहा है। न्यूयॉर्क से IRIB के लिए अली रजबी की रिपोर्ट।
यूक्रेन संकट के संदर्भ में जापान और दक्षिण कोरिया ने अब अमेरिका का खुलकर पक्ष लेना आरंभ कर दिया है। यूक्रेन युद्ध के बहाने रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को अधिक बढ़ाने में अमेरिका के दो एशियन घटक देश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रूस के विरुद्ध प्रतिबंधों के अंतर्गत जापान रूस के 10 से अधिक अधिकारियों को प्रतिबंधित कर रहा है। साथ ही कायम रिजवी,
यूक्रेन संकट के संदर्भ में जापान और दक्षिणी कोरिया ने अब अमेरिका का खुलकर पक्ष लेना शुरू कर दिया है। यूक्रेन युद्ध के बहाने रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों को अधिक विस्तृत करने में अमेरिका के दो एशियन घटक देश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रूस के विरुद्ध प्रतिबंधों के अंतर्गत जापान रूस के 10 से अधिक अधिकारियों को प्रतिबंधित कर रहा है। इसी बीच दक्षिणी कोरिया ने भी घोषणा की है कि वो मॉस्को के विरुद्ध पश्चिमी प्रतिबंधों में बढ़ चढ़कर भाग लेगा, हालांकि इससे पहले वो इस काम का इच्छुक नहीं था। अगर देखा जाए तो रूस के विरुद्ध पश्चिमी प्रतिबंधों को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पारित नहीं किया, बल्कि अमरीका के साथ मिलकर केवल पश्चिमी देश ही ये काम कर रहे हैं। वैसे रूस के विरुद्ध जापान और दक्षिणी कोरिया के प्रतिबंध कई आयामों से अमेरिका के लिए विशेष महत्व रखते हैं। एक तो ये है कि इससे पता चलेगा कि रूस के विरुद्ध प्रतिबंधों के लिए अमेरिकी गठबंधन बढ़ता जा रहा है। दूसरा ये कि इससे रूस पर अधिक दबाव बनेगा। हालांकि जानकारों का ये भी कहना है कि रूस को अलग थलग करने के उद्देश्य से पश्चिम की ओर से मॉस्को के विरुद्ध लगाए जाने वाले प्रतिबंध अब तक प्रभावी सिद्ध नहीं हुए हैं। ऐसे में ये पश्चिम विशेषकर अमेरिका के लिए बहुत बड़ी विफलता है। यही कारण है कि रूस को अधिक से अधिक दबाव में डालने के लिए अमेरिका का ये प्रयास है कि मॉस्को के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने वाले देशों की सूची को बढ़ाया जाए। यूक्रेन युद्ध को आरंभ हुए एक वर्ष का समय गुजर रहा है, किंतु रूस की ओर से किसी भी कमजोरी का अभी तक कोई प्रदर्शन नहीं किया गया। रूस के विरुद्ध प्रतिबंधों से जापान और दक्षिणी कोरिया को अधिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं आयात पर ही निर्भर है और रूस उनके लिए काफी बड़ी मंडी रहा है। रूस और जापान के बीच पहले से सीमा मतभेद भी पाए जाते हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच किसी भी मुद्दे को लेकर तनाव अधिक गहरी समस्या पैदा कर सकता है। जापान और दक्षिणी कोरिया की सरकारों ने सुदृढ़ सेना बनाने के लिए कुछ महत्वाकांक्षी कदम भी उठाए हैं। उनका सोचना है कि वर्तमान समय में अमेरिका का साथ देने से क्षेत्र में वे अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि जापानी संविधान के अनुसार इस देश को सेना रखने की अनुमति ही नहीं है। अमेरिका के समर्थन के कारण जापान के सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेट दल ने अपने देश के संविधान को अनदेखा करते हुए नई सैन्य नीति अपनाई है। एक अन्य विषय यह है कि भूमि को लेकर जापान और दक्षिणी कोरिया के बीच गंभीर मतभेद पाए जाते हैं। दोनों देशों की सैन्य शक्ति के बढ़ने की स्थिति में भविष्य में टोक्यो और सियोल के लिए नई समस्याएं सामने आ सकती हैं। इन हालात में दूरदर्शिता यही है कि अमेरिका की हस्तक्षेपपूर्ण नीतियों का समर्थन करने के बजाय दो पड़ोसी देश अपने राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय हितों के दृष्टिगत ही कोई फैसला करें।
तो श्रोताओ, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा, जिसे लेकर उपस्थित है हमारे साथी मोहम्मद मेहदी, और अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है कार्यक्रम आशा की किरण।
आशा की किरण।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण के एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और मोहम्मद मेहती का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आपको अवश्य याद होगा कि पिछले कार्यक्रम में हमने कहा था कि महामुक्तिदाता के बारे में ईमान मजबूत करने के लिए महान ईश्वर पर ईमान को मजबूत करना जरूरी है। उसकी वजह यह है कि जिस इंसान की आस्था महान ईश्वर के बारे में सही नहीं होगी, उसकी आस्था कभी भी महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में भी सही नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर, जो इंसान महान ईश्वर को सर्वसमर्थ व सर्वशक्तिमान मानता है और उस पर गहरी आस्था रखता है, वो इस बात को बहुत आसानी से समझ सकता है कि जिस ईश्वर की शक्ति कल्पना से परे है, उस ईश्वर के लिए महामुक्तिदाता को 1000 या हजारों साल जिंदा रखना कौन सी आश्चर्य की बात है। महान ईश्वर जिसे चाहे जब तक चाहे जिंदा रख सकता है। जिस तरह शैतान हजरत आदम के पैदा होने से पहले से था और आज तक जिंदा है और न जाने कब तक जिंदा रहेगा।
कोई ये प्रश्न कर सकता है कि महामुक्तिदाता इतने वर्षों से क्यों गायब हैं? लोगों की नजरों से ओझल होने का कारण क्या है? इस सवाल के जवाब से पहले हमें इस बात को जानना चाहिए कि दुनिया और ब्रह्मांड में हर चीज का कारण हमें ज्ञात नहीं है, तब भी उसे सब मानते हैं। दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिसकी असल वजह किसी को ज्ञात नहीं है, मगर सब मानते हैं। उदाहरण के तौर पर, आत्मा क्या चीज है? वो क्यों दिखाई नहीं देती है? शरीर त्यागने के बाद वो कहाँ चली जाती है? इसी तरह सुगंध या दुर्गंध किस रंग की होती है? हवा, बिजली, मिठास और कड़वाहट किस रंग के होते हैं? सुगंध या दुर्गंध का वजन क्यों नहीं होता है?
इन चीजों की वास्तविकता का ज्ञान आज तक किसी को नहीं हो सका, मगर इन चीजों के अस्तित्व को सब मानते हैं। किसी को भी नहीं पता कि आत्मा क्या चीज होती है, मगर सब मानता है कि आत्मा नाम की एक चीज होती है जिसकी वजह से इंसान जिंदा रहता है, और उसके बिना कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता।
उसी तरह महामुक्तिदाता लोगों की नजरों से ओझल हैं। इसकी असल वजह क्या है? इसे महान ईश्वर, पैगंबर इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों के अलावा कोई नहीं जानता। पैगंबर इस्लाम अपने एक प्रसिद्ध अनुयायी जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी को संबोधित करते हुए फरमाते हैं, हे जाबिर, इमाम महदी का गायब होना ईश्वरीय रहस्यों में से है जो बंदों से पोशीदा है। कहीं ईश्वर के काम में संदेह न करना, क्योंकि इस कार्य में संदेह कुफ्र है। इसी प्रकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम महदी के गायब होना एक रहस्य है जो उनके जुहूर के बाद ही स्पष्ट होगा, परंतु पैगंबर इस्लाम और उनके पवित्र परिजनों के कथनों की रोशनी में 12वें इमाम के गायब होने के कुछ कारणों को हम समझ सकते हैं।
आशा की किरण। मानवता के मोक्षदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर सटीक बहस पर आधारित कार्यक्रम आशा की किरण। हर हफ्ते बुधवार को।
इमाम के गायब होने का एक कारण अब्बासी हुकूमतें थीं। अब्बासी शासक इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को शहीद करना चाहते थे और इमाम को ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, परंतु इमाम का पता न लगा सके। इमाम के गायब होने का एक कारण है कि हर ईश्वरीय दूत को अपना मिशन आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे अनुयायियों की जरूरत होती है जो ईश्वरीय दूत का समर्थन और उसके आदेशों का पालन करें। जबकि इतिहास का अध्ययन करने से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पैगम्बर इस्लाम और दूसरे इमामों को लोगों का पूर्ण व प्रभावी समर्थन प्राप्त नहीं था, और अगर समस्त लोगों का पूर्ण व प्रभावी समर्थन प्राप्त होता तो अत्याचारी शासक कभी भी न तो किसी इमाम को यातना देते और न ही शहीद कर पाते।
लोगों ने पैगम्बर इस्लाम के उत्तराधिकारियों और ईश्वरीय दूतों की कद्र नहीं की। उसकी वजह यह है कि लोगों ने इन महान हस्तियों का मूल्य नहीं समझा। इस समय मानवता के महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम लोगों की नज़रों से ओझल हैं, तो ये एक प्रकार की वंचितता है। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब ईश्वर इंसानों के क्रियाकलापों से क्रोधित होता है तो हमें लोगों के बीच से दूर कर देता है। महान ईश्वर ने महामुक्तिदाता के जुहूर की एक शर्त यही रखी है कि लोग बौद्धिक व आध्यात्मिक दृष्टि इस लायक हो जाए कि वे इमाम की कद्र कर सकें और उनके पावन अस्तित्व का महत्व समझ सके। महान ईश्वर जो 12वें इमाम को पर्दे गैब में रखे हुए है, तो उसका एक कारण यह है कि हम ज्ञान बुद्धि और आध्यात्मिक की दृष्टि से वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ पहुंचना चाहिए। लोग अभी इस लायक नहीं हुए हैं कि वे इमाम का महत्व समझ सकें। जब तक लोग इस लायक व योग्य नहीं हो जाते कि वे इमाम का महत्व समझ सकें, तब तक महामुक्तिदाता का जुहूर नहीं होगा। केवल जबान से दुआ करने से कुछ नहीं होगा।
जो इंसान वास्तव में महामुक्तिदाता का प्रतीक्षक बनना चाहता है, उसे चाहिए कि वो अपने आप को इमाम का महत्व समझने के लायक बनाए। अगर कोई इंसान रात दिन इमाम के जुहूर की दुआ करता है, परंतु वो न तो अपना अमल सही करता है और न ही अपने ज्ञान में वृद्धि करता है और न ही अपनी सोच बदलता है, तो वो इमाम के जुहूर का सच्चा प्रतीक्षक नहीं है। हाँ, ये संभव है कि कुछ लोग उसे बड़ा मोमिन और दीनदार समझें, परंतु लोगों की सोच से वास्तविकता और सच्चाई नहीं बदलती।
अगर सभी या अधिकांश लोग एक गैर मोमिन को मोमिन समझे तो गैर मोमिन मोमिन नहीं हो जाएगा। मिसाल के तौर पर चांदी की अंगूठी पर सोने का पानी चढ़ा दिया जाए और लोग उसे सोना समझें, तो चांदी सोना नहीं हो जाएगा। चांदी की अंगूठी चांदी ही रहेगी, यद्यपि अधिकांश लोग उसे सोने की अंगूठी समझेंगे, परंतु अगर सोनार के पास ले जाएं तो सच्चाई को समझने में उसे तनिक भी देर नहीं लगेगी और वो चांदी की अंगूठी को सोने की कीमत पर नहीं खरीदेगा।
महामुक्तिदाता के जुहूर की एक शर्त यह है कि लोग उनके अस्तित्व की जरूरत महसूस करने लगें। जब तक लोग उनके पवित्र अस्तित्व की जरूरत का आभास नहीं करेंगे, तब तक इमाम का जुहूर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर कोई इंसान हल्का फुल्का बीमार हो या सर्दी जुकाम हो गया हो और वो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत महसूस न करे, ऐसी हालत में अगर डॉक्टर उसके पास आ जाए तो वो व्यक्ति यही कहेगा कि अभी आपके आने की कोई जरूरत नहीं थी।
मानवता के मुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया को शांति, सुरक्षा और न्याय से उस तरह से भर देंगे जिस तरह वो अन्याय व अत्याचार से भरी होगी। सवाल ये पैदा होता है कि जब मोक्षदाता शांति व न्याय स्थापित करने के लिए चमत्कार का सहारा नहीं लेंगे तो किस प्रकार वो पूरी दुनिया में शांति, सुरक्षा और न्याय स्थापित कर देंगे। इसके जवाब में बहुत से लोगों का कहना है कि इमाम का जुहूर उस वक्त होगा जब उनका ज्ञान और उनकी सोच उस स्थान पर पहुंच जाएगी कि उन्हें गलत कार्यों व अन्याय से चिढ़ हो जाएगी। वो गलत व अनैतिक कार्यों को मानवता की शान के खिलाफ समझने लगेंगे। वो गलत व अनैतिक कार्यों को मानवता के भौतिक व आध्यात्मिक विकास के मार्ग की रुकावट समझने लगेंगे। लोग न्याय की स्थापना को मानव समाज की ज़रूरत समझने लगेंगे और इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास में हाथ बटाने को अपना परम दायित्व समझेंगे। दूसरे शब्दों में महामुक्तिदाता लोगों के दिलों की आवाज़ बनकर जुहूर करेंगे।
महामुक्तिदाता का लोगों की नज़रों से गायब होना एक परीक्षा भी है। इमाम की गैबत के काल में केवल उन्हीं लोगों का ईमान साबित रहेगा जिनके दिलों की महान ईश्वर परीक्षा ले चुका होगा। इमाम जमान अलैहिस्सलाम का जब जहूर होगा तो कुछ विशिष्ट मोमिन होंगे जो महामुक्तिदाता के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे।
यहाँ एक बिंदु का उल्लेख जरूरी है और वो ये है कि ऐसा नहीं है कि मानवता के महामुक्तिदाता इमाम मादी अलैहिस्सलाम ही केवल लोगों की नज़रों से ओझल हुए हैं, बल्कि इमाम से पहले नबी भी गायब हुए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल सामने है। वे पैगंबर इस्लाम के जन्म से काफ़ी साल पहले पैदा हुए थे और महान ईश्वर के आदेश से आज तक गायब और ज़िंदा हैं। इसी प्रकार हज़रत इदरीस पैगंबर हैं, वो 20 वर्षों तक लोगों की नज़रों से गायब थे। इसी तरह एक अन्य पैगम्बर हज़रत सालेह भी गायब थे। इस संबंध में इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम फरमाते हैं, बेशक सालेह अपनी कौम से कुछ समय के लिए गायब हो गए थे। जब वो गायब हुए थे तो बड़ी उम्र के थे और जब वो अपनी कौम में पलट कर वापस आए तो कोई उन्हें चेहरे से नहीं पहचान रहा था। हज़रत सुलेमान भी एक अन्य पैगम्बर हैं जो कुछ समय तक अपनी कौम से गायब थे।
दोस्तों, यहाँ एक अन्य बिंदु को बयान करना ज़रूरी है और वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो ईश्वरीय दूत हैं जो कई बार गायब हुए थे, परंतु सबसे मशहूर वो गैबत है जब उन्हें गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ाना चाहते थे। पवित्र कुरान इस संबंध में कहता है, निश्चित रूप से ईसा को सूली पर नहीं चढ़ाया गया बल्कि ईश्वर ने उन्हें ऊपर की ओर बुला लिया कि ईश्वर तत्वदर्शी और हर काम करने पर पूर्ण सक्षम है।
रिवायतों में आया है कि जब महामुक्तिदाता इमाम मादी अलैहिस्सलाम का जुहूर होगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ होंगे और उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। बहरहाल गायब होना ऐसी घटना नहीं है जो पहली बार हुई है, बल्कि महामुक्तिदाता से पहले भी ये घटना कई बार हो चुकी है। परंतु इमाम जमान अलैहिस्सलाम क्यों गायब हैं, इसकी असल वजह महान ईश्वर पैगम्बर इस्लाम और उनके पवित्र परिजन ही जानते हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब महामुक्तिदाता का जुहूर होगा तो वे काबे से टेक लगाए होंगे और 313 निष्ठावान अनुयायी उनके साथ होंगे। दोस्तों, इस हदीस की रोशनी में ये बात पूरी तरह स्पष्ट है कि महामुक्तिदाता काबे में जुहूर करेंगे और जिस तरह इस्लाम की पहली जंग जंग बद्र में 313 योद्धा थे, उसी तरह इमाम के अत्यंत निष्ठावान अनुयायियों की संख्या भी 313 होगी।
इमाम अली बिन मूसा यानी इमाम रजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जहूर होगा तो उनका चेहरा जवान का चेहरा होगा जबकि उनकी उम्र काफी होगी और देखने वाला उन्हें 40 साल का समझेगा। इसी प्रकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम एक अन्य हदीस में फरमाते हैं, जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जहूर होगा तो जो मोमिन भी इस दुनिया से जा चुका होगा उसकी कब्र खुशी से भर जाएगी।
वास्तव में इमाम जमान अलैहिस्सलाम का जहूर न केवल मोमिनों बल्कि अत्याचारियों के अलावा समस्त इंसानों की महा ईद होगी। इमाम जमान अलैहिस्सलाम का जहूर उस ईश्वरीय वादे का व्यवहारिक होना है जो उसने हजारों वर्षों से आसमानी किताबों में कर रखा है। इमाम का जुहूर पूरी मानवता की खुशी नहीं बल्कि महाखुशी है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल।
आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मरियम मेहरदादी और रवीश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, ड्रोन की कई किस्में हैं, जिनमें से एक सैन्य प्रयोग के लिए है। सैन्य प्रयोग वाले ड्रोन ही कई प्रकार के होते हैं। इनमें से एक तो वे हैं जो शत्रु पर हमला करने के काम आते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के वे ड्रोन हैं जो रसद सामग्री पहुंचाते हैं। ड्रोन को चालक रहित विमान भी कहा जाता है। ड्रोन की बहुत सारी किस्में होती हैं। इसके माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम बड़ी ही सरलता से किए जा सकते हैं। वर्तमान युग में ड्रोन का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। इसको विभिन्न प्रकार की तकनीक के माध्यम से तैयार किया जाता है।
जैसे जैसे ड्रोन की तकनीक आधुनिक होती चली गई, वैसे वैसे इसके प्रयोग के क्षेत्रों में भी वृद्धि होती गई। ड्रोन के प्रयोग का एक कारण यह भी है कि मानव रहित होने के कारण किसी भी परिस्थिति में पायलट की जरूरत नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप जान का खतरा नहीं होता। ड्रोन की एक विशेषता यह है कि वो लगातार उड़ान भरकर बिना किसी भी समस्या के अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है। ड्रोन में लगे हुए कैमरों से फोटो और वीडियो शूट किया जा सकता है। देशों की सेनाओं के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रोन का प्रयोग करके देश को सुरक्षित बनाया जा सकता है।
सैन्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले ड्रोन कई प्रकार के होते हैं। जमीन में या फिर आसमान में लक्ष्यों को भेदने वाले ड्रोन, जासूसी करने वाले ड्रोन और रसद या सहायता पहुंचाने वाले ड्रोन आदि। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि युद्ध में हवाई हमले और हवाई रक्षा को विशेष महत्व हासिल रहता है। सैन्य मामलों के जानकार बताते हैं कि बहुत से अवसरों पर जमीनी हमलों को सफल बनाने के लिए हवाई रक्षा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर किसी देश की ये रक्षा प्रणाली मजबूत नहीं है तो उसको युद्ध में भारी क्षति पहुंच सकती है।
दोस्तों, युद्ध में कभी कभार तो ऐसा भी अवसर आ जाता है जब हवाई रक्षा की छाया में जमीनी कार्रवाई की जाती है। यही कारण है कि युद्धों, विशेषज्ञ युद्ध के दौरान वायुसेना की मजबूती को सेना के अन्य अंगों की मजबूती के रूप में देखते हैं। किसी भी देश में जितनी वायुसेना मजबूत होगी, उसी अनुपात में उसे देश की जमीनी और नौसेना भी सुदृढ़ होगी। हालिया कुछ वर्षों के दौरान ईरान में एंटी एयरक्राफ्ट और ड्रोन के विकास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय ढंग से ध्यान केंद्रित किया गया है। ड्रोन के निर्माण में इस समय इस्लामी गणतंत्र ईरान पश्चिमी एशिया का अग्रणी देश बन चुका है।
ड्रोन या चालक रहित विमान बनाने और उसके प्रयोग की दृष्टि से ईरान मध्य पूर्व में सबसे आगे है। इस समय ईरान की सेना अपनी सभी छावनियों में ड्रोन को विकसित कर रही है। उसने इस संबंध में आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण कर लिया है। ईरान द्वारा निर्मित सैनिक ड्रोन भारी उपकरण ले जाने में सक्षम हैं। यही वजह है कि ईरान में बहुत बड़े पैमाने पर चालक रहित विमान या ड्रोन का व्यापक निर्माण किया गया है। ईरान में ऐसे ड्रोनों का भी निर्माण किया जा चुका है जो हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलों से लैस होते हैं।
शरीर एच 110 नामक एंटी एयरक्राफ्ट एवं ड्रोन का प्रयोग इस्लामी गणतंत्र ईरान की वायुसेना का पहला अनुभव था। इसको देश की सेना की खातमुल अंबिया छावनी ने बनाया। 29 फरवरी 1392 को सेना दिवस की परेड में इसका अनावरण किया गया था। इस हिसाब से इसको सेना के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की पहली देन भी कह सकते हैं। देश की डिफेंस बेस्ड छावनी खातमुल अंबिया के तत्कालीन कमांडर फरजाद इस्माइल ने सरीर एच 110 नामक ड्रोन के बारे में बताया था कि यह रडार की पकड़ से बाहर है।
कमांडर फरजाद इस्माइल का कहना था कि इसकी उड़ान की क्षमता अधिक है और ये अधिक ऊंची उड़ान पर जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि शरीर एच 110 में हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल ले जाने की भरपूर क्षमता पाई जाती है। खातिमुल अंबिया के तत्कालीन कमांडर फरजाद इस्माइल के अनुसार इस प्रकार के कई ड्रोन बनाकर प्रयोग किए जा चुके हैं। इसकी एक विशेषता ये भी है कि वो अपनी दिशा को भी बदल सकता है। उदाहरण स्वरूप, यदि ये पश्चिम की ओर जा रहा है तो इसके भीतर दिशा बदल कर पूरब की ओर जाने की क्षमता पाई जाती है।
फरजाद इस्माइल ने इस ओर भी संकेत किया कि इसके भीतर अपने लक्ष्य को सटीक ढंग से भेदने और शत्रु के क्षेत्रों और लक्ष्यों की फोटो लेने की भी योग्यता मौजूद है। उनका कहना था कि यह हर प्रकार की कार्रवाई करने में सक्षम है। इसको देश के भीतर ही ईरान के विशेषज्ञों ने बनाया है। शरीर एच 110 की बनावट के बारे में बताया जाता है कि यह लगभग 7 मीटर लंबा है। इसकी चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर से भी कम है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि वो 8 से 12 घंटों तक 3,500 से 5,500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान कर सकता है। बताया जाता है कि शरीर एच 110 ड्रोन लगभग 100 किलोग्राम के भार को ले जाने में सक्षम है।
इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे रडार की पहुंच से दूर, ऊंची उड़ान, लंबी आयु, कैमरा और मिसाइल ले जाने की क्षमता तथा दूसरों की तुलना में अधिक से अधिक समय तक उड़ने की योग्यता आदि। इसमें 2 पिस्टन इंजन और 1 प्रोपेलर है। इसका एक इंजन सामने की ओर होता है जबकि दूसरा इसके अंतिम छोर पर है। इस हिसाब से ये पहला सैंड ड्रोन था जो 2 इंजनों का स्वामी है। इसके 2 इंजन होने का एक लाभ तो ये है कि वे इसको अधिक सक्षम बनाते हैं, इसके अतिरिक्त इसको अधिक गति प्रदान करते हैं।
दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है कि 2 इंजनों का स्वामी होने के कारण इसमें अधिक भार ले जाने की क्षमता मौजूद है। 2 इंजन होने की वजह से हवा में मार करने वाले मिसाइलों को ये सरलता से ले जाता है। इसके अतिरिक्त लंबी उड़ान तथा अधिक क्षमता भी शरीर एच में इसलिए पैदा हुई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रतिबंधों का शिकार ईरान हर प्रकार के दबाव के बावजूद रक्षा के क्षेत्र में उसने उल्लेखनीय प्रगति की है। सैन्य क्षेत्र में की जाने वाली ये प्रगति ऐसी है जिसकी सराहना ईरान के शत्रु तक कर रहे हैं।
पिछले 4 दशकों के दौरान ईरान ने आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, कृषि, औद्योगिक, तकनीक सहित अन्य क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय प्रगति की है उसको स्वीकार करने पर शत्रु तक विवश हुए हैं। इस्लामी क्रांति की सफलता के 4 दशकों के बाद ईरान बहुत ही तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद से ईरान ने पिछले 44 वर्षों के दौरान जो उपलब्धियां हासिल की हैं उनको इस देश के शत्रु भी अब अनदेखा नहीं कर पा रहे हैं।
ईरान की इन उपलब्धियों ने पश्चिम, विशेषकर अमरीका, अचंभित रह गया है। अमरीका और उसके घटकों ने प्रतिबंधों, आर्थिक संकट और ईरान पर दबाव से अपेक्षा लगा रखी है, परंतु उनके प्रयासों का उल्टा परिणाम निकला है और ईरान की प्रगति इन्हीं प्रतिबंधों और दबावों का परिणाम है। अमरीका और पश्चिमी संचार माध्यम सदैव प्रतिबंधों से ईरान पर पड़ने वाले प्रभावों की बात करते हैं।
वे इन प्रतिबंधों को तेहरान के लिए हानिकारक बताते हैं, जबकि ईरान विभिन्न विशेषकर वैज्ञानिक क्षेत्र में ध्यान योग प्रगति कर रहा है। गत 40 वर्षों से ईरान के समस्त क्षेत्रों को अमेरिका और यूरोप के अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का सामना रहा है, परंतु इन प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने विभिन्न विशेषकर वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में ध्यान योग प्रगति की है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और समय हो चुका है आज के मुख्य समाचारों के सारांश का। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के प्रमुख ने कहा है कि तेहरान का यूरेनियम संवर्धन 7% है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के प्रमुख ने सुप्रीम लीडर की आम माफी के ऐलान की सराहना की है और अरब देशों की संसद ने इसराइली छापामार संगठनों को आतंकी घोषित करने की मांग की है तथा यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अमेरिका का बयान है कि रूस की विजय हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। तो इसी के साथ अख्तर अब्बास और साथियों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।